आज मुझे तो बस आपकी आज्ञा, मैं आपके पास आया था, आपने बोल के छूट ऐसे बोले थे, पर मैंने उसके बाद 1-1.5 महीने का ब्रह्मचर्य भी आया, फिर मैंने आपका द्रोह कर दिया, इतना आपका कीमती समय पूरा मतलब फिर द्रोह हो गया आपका। मुझे तो बस आपकी गुरु आगे पालन कर रहा है, आप जो कह दे उसको पकड़ लूंगा। मैं मंत्र बोलने वाला तो पर लगा कि कहीं उधर आश्रय में कमी ना हो जाए, पुकार में या श्री जी में, तो मुझे मतलब
नहीं, नाम नाम जप करो, नाम नाम जप करो और थोड़ी देर दंड बैठक मारो। दंड बैठक मारते
अभी थोड़ी दिन से जिम चालू किया जब से आपके पास।
हाँ, थोड़ी देर मतलब व्यायाम करो और आधा घंटा प्राणायाम करो। प्राणायाम समझते हो? हाँ, सीख लो, आजकल तो सिखाने वाले लोग हैं। प्राणवायु संशोधन और शरीर व्यायाम और खूब सेवा पाठ, अपना जो पढ़ाई लिखाई जो अपना हो उसे करो, बीच बीच में राधा 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 नाम जपते रहो, ठीक है? और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो।
आपका द्रोह किया था।
कौन सा द्रोह?
करे आज्ञा का उल्लंघन हो।
कोई बात नहीं है, ये तो चलता है, द्रोह थोड़ी इसे कहते हैं। द्रोह तो होता है कि डट के विरोध करना। अरे भाई, आज्ञा पालन नहीं हो पाया, बच्चे हो, इसमें कोई द्रोह थोड़ी माना जाता है। आप निश्चिंत, और ब्रह्मचर्य का ज्यादा दिमाग ना लगावे, भूल जाओ उसको तो ब्रह्मचारी हो जाओगे। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना रहना रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया, अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा, छोड़ो उसको भी छोड़ो।
महाराज ऐसे परेशान
नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य तो नष्ट ही हो जाता।
नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उस पर पूरा दिमाग थोड़ी लगा देना है। दिमाग लगाओ प्रभु पे भाई, दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, समझ रहे हो ना?
आपको जब से सुना तब से छोड़े, कभी देखता नहीं, कभी किया नहीं, करो आपने आप हो जाते हैं।
हाँ नहीं, बहुत अच्छे हो, पर अब इसका भी चिंतन मत करो कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 12, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा, ऐसे नहीं चला जाता है। देखो ब्रह्मचर्य का आप खुली बात समझो, जैसे बटलोई में दाल चढ़ती है तो उसका उफान आती है, ऐसे हमारे शरीर की गर्मी कभी कभी निकलती है सबके, उसे ब्रह्मचर्य हानि नहीं कहते। ये हम परमहंस की बात बता रहे हैं। नजफगढ़ में श्री ओंकारानंद सरस्वती जी परमहंस जी थे, जब हमारी 15-16 की अवस्था थी तो उन्होंने बताया, जब कोई क्रिया से ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है या फिर स्वप्न में सहवास देखा और फिर, तो वो दोष माना जाता है, अन्यथा वो शरीर का विकार है, वो अपने आप निकल जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो कि हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। आपकी तरफ से कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बस आप निश्चेष्ट हैं और स्वाभाविक शरीर के जैसे दोष निकलते हैं, मलमूत्र निकलते हैं, ऐसे वो दोष है उसमें कोई परेशानी नहीं। जब हमारे अंदर कोई सहवास की चिंतन वृत्ति होगी या हम कोई क्रिया करेंगे तब वो संतान उत्पत्ति का जो पावर ब्रह्मचर्य है वो क्षीण होता है, ऐसे अपने आप नहीं क्षीण होता। अपने आप जो दोष होता है वो शरीर का विकार होता है, निकल जाता है, उससे कोई हानि नहीं होगी।
महाराज आपका दोस्त बना लीजिए ना महाराज।
हमारा तो पूरा विश्व दोस्त है, अब जो दुश्मनी करे वो बात अलग, नहीं दोस्त तो है।
क्या ये जो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं राधा रानी का 28 नामों का जाप करने से,
क्या होगा?
राधा रानी का 28 नामों का जाप करने से हर विश पूरी होती है,
हर मनोकामना पूरी हो जाती है।
रानी का 28 नाम जप करने से कामना पूरी होती है,
उसे भगवान के नाम से कामना तो पूरी होती है। अब जो भी ना 28 जपो, 1000 जपो, गोपाल शास्त्र नाम भी तो है, तो भगवान के किसी भी नाम को एक बार किसी भी नाम में लगो तो कामनाओं की पूर्ति और निवृत्ति दोनों हो जाएगी। भगवान चाहेंगे तो पूर्ति कर देंगे, नहीं उसकी निवृत्ति कर देंगे, शांति मिल जाएगी, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभु के कोई भी नाम हो, किशोरी जी के नाम, लाल जी के नाम, भगवान के कोई भी नाम हो, वो तो सब मंगल करने वाले हैं। हमारी श्रद्धा सब नामों पर है, कोई भी नाम जप करो, 28 पाठ करो या 1000 पाठ करो, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, ये सब मंगल करने वाले हैं।
रोग से मुक्ति हो जाती है।
फिर आप प्रश्न करोगे आपकी किडनी कैसे खराब है। क्योंकि हम इस रोग के लिए नहीं है, हम भव रोग के लिए और प्रेम रोग पाने के लिए, तो फिर ये सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। बकाया हमारी श्रद्धा ऐसी है कि अगर आप चाहोगे तो रोग नष्ट हो जाएंगे पक्का। भगवान नाम में अपार सामर्थ है। अभी कितने ऐसे हैं जो रोग रहित हो गए, कितने ऐसे हमारे सामने हैं कि हर रोग नष्ट हो सकता है नाम से, हर रोग नष्ट हो सकता है। अरे जब भव रोग नष्ट हो सकता, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, श्री धन्वंतरी जी ने जब आयुर्वेद का शोध किया तो अच्युत कृष्ण गोविंद नाम में जो सामर्थ्य हो किसी औषधि में सामर्थ्य नहीं, पर इस नाम से हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं, इस नाम से हम भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं। शरीर स्वस्थ होना एक साधारण सी बात है, क्योंकि ये चार दिन टिकेगा, मरेगा तो है ही है, आज नहीं तो कल मरेगा, तो हम नाम का प्रयोग भगवान की प्राप्ति के लिए करें, पर यदि रोग के लिए करें तो ठीक हो सकता है, पक्का ठीक।
डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी नाथ द्वारा से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षा में शोध कार्य इत्यादि का दायित्व निर्वहन करता हूँ। 18 महीने से प्रत्यक्ष राधा के लिए कुंज आकर एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऐप यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव के मुखारविंद से प्रज्वलित शब्दों को जीवन में धारण करने का बल मिल रहा है मेरे को। महाराज जी आपका प्रश्न है कि धर्म किसी स्वार्थ साधन या किसी बहाने या निमित्त से नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे धर्म का प्रभु अंगीकार नहीं करते, लेकिन बहिरंग धर्म से ही अंतरंग धर्म की ओर प्रवेश संभव है, बिना निमित्त के भाव कैसे बनेगा? महाराज जी कह रहे हैं
बहिरंग धर्म भी धर्म की सीमा में रहकर करना है ना। बहिरंग धर्म का तात्पर्य आप क्या लेते हैं, जैसे बाहर आरती करना है, पूजा करना है, या किसी व्यक्ति की सेवा करनी, या समाज की सेवा करनी, या कोई भी है, तो धर्म के सीमा के अंतर्गत रह के करना। तो बहिरंग धर्म वो कोई दिखावा के लिए तो नहीं कर रहे ना, अपने धर्म की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो वही बहिरंग धर्म हमारे अंतःकरण को पवित्र करके सत्य सनातन सच्चिदानंद प्रभु की तरफ लगा देगा। तो बहिरंग का मतलब अगर हम दिखावा कर रहे हैं, दम कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो धर्म नहीं, वो अधर्म हो गया। आज सत्संग में सुनाया था अधर्म की 5 शाखाएं। तो बहिरंग धर्म का तात्पर्य है हमारी धर्म की सीमा के अंतर्गत। हम जैसे बहिरंग धर्म है, हम किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, तो हम उसमें भी भगवान को देखकर उसको सुख प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी पूरी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, चाहे भगवान की आरती पूजा हो या किसी व्यक्ति की सेवा हो, हम धर्म की सीमा में बंद करके कर रहे हैं। अगर वो दिखावा है, अगर वो दम्भ है, अगर वो अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए, तो फिर वो धर्म ही नहीं है। वो धर्म के भाव में केवल दिखाई देने वाला दम्भ पाखंड है, वो अधर्म ही है, वो धर्म नहीं है। आप बहिरंग को किस पॉइंट पे ले रहे हैं?
बहिरंग को मर्जी मंदिर जाना, पुण्य तिथि, उत्सव त्योहार, व्रत आदि, ईश्वर आदि,
ये हमारे धर्म के स्वरूप है। इनको हम बहिरंग कह केवल रहे, इन्हीं से तो हमारी आंतरिक भाव की उत्पत्ति होती है। जैसे अपने ठाकुर जी के मंदिर में गए, 4 परिक्रमा की, उनको साष्टांग दंडवत किया, उनको निहारा कि हमारे प्रभु इस रूप में जब कण कण में है तो मूर्ति में भी भगवान है, हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो अगर ये एक दिखावा हो जाए, पापाचरण करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए मंदिर जाते हैं, दिखावा कर दिया और लौट के आके फिर मनमानी आचरण करते हैं, तो ये पाखंड हो गया, ये दम्भ हो गया। वही बहिरंग साधन अंतःकरण को पवित्र करके अंतरंग साधन में लगा देगा। वही बहिरंग साधन या दिखावा दम्भ पाखंड है तो वही अधर्म हो जाएगा।
यदि महाराज जी मान लो दम्भ पाखंड भी है, बहिरंग पक्ष में है, लेकिन धीरे धीरे वो बहिरंग से अंतरंग में प्रवेश कर सकते,
वो अंतरंग के लिए ही है। चूंकि हम लोग बहिर्मुख हैं, इसलिए हमारे बाहरी बहुत से साधन बताए गए, जैसे शास्त्र स्वाध्याय करना, भगवान की चर्चा करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान के मंदिर जाना, भगवान को प्रणाम नमस्कार करना, भगवान के भाव से दूसरों की सेवा करना, भगवत भाव से पशु पक्षियों की भी सेवा करना। इसी साधना से धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा तो अंदर में नाम चलने लगेगा, मंत्र चलने लगेगा, भगवान का ध्यान चलने लगेगा, बाहर शिथिलता आती जाएगी और अंदर की भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी, और एक दिन ऐसी भावना में आएगी कि भगवत भाव वाला बन जाएगा। प्रारंभ तो सबका शुरुआत बहिरंग से ही होता है ना, स्थिति सबकी अंतरंग में ही जाके पूर्ण होती है। अगर वो दम्भ पाखंड रोग से ग्रसित ना हो जाए तो अहंकार जहां आया तो साधन अंतरंग का एकदम ठप हो जाएगा और बहिरंग में पाखंड आ जाएगा। इसलिए सत्संग सुनता रहे, शास्त्र स्वाध्याय करता रहे, तो महापुरुषों के संग से और शास्त्र स्वाध्याय से बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो बहिरंग से होते होते अंतरंग में पहुंच जाएगी, और अंतरंग ही स्थिति होती है। बहिरंग तो फिर केवल क्रिया मात्र रह जाता है।
प्रवेश के लिए बहिरंग
बिल्कुल जरूरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता, उसके बिना हो ही नहीं सकता। हम जैसे बाहर ठाकुर सेवा करते तो धीरे धीरे फिर मानसिक में प्रवेश हो जाता है। अगर बाहरी ठाकुर सेवा ना करे तो मानसिक में प्रवेश कैसे हो जाएगा? बाहरी सेवा आसक्ति ही। अब जैसे अपने ठाकुर को बहुत प्यार हम करते हैं, हमारे पास सामग्री तो है नहीं, तो भाव में डूब गए हम, ढेर सारे फूल का एक ऐसे बनाते हैं, उनमें प्रिया प्रीतम विराजमान करते हैं। अब हमारे पास कुछ है नहीं, इसमें पैसा तो लगा नहीं ना, भाव का है, सोने की चौकी, सोने की थाल, उसमें छोटी छोटी कटोरी और विविध प्रकार के पदार्थ जो हमारे भावने में आ रहे, इसमें रसगुल्ला रख दिया, इसमें गुजिया रख दिया, समोसा रख दी, चटनी रख दी, फुलौड़ी पकौड़ी, ऐसे विविध प्रकार के पदार्थ। अब हम पवा रहे हैं, सच्चा भोग लग रहा है पर आंतरिक लग रहा है। ये कब लगा? जब बाहरी सेवा में आसक्त हुई, हमारे पास सामग्री है नहीं, लगता है अपने प्रभु को पहनाऊं, अपने प्रभु को भोग लगाऊं, तो वो जो लगता है वही अंदर का भाव बना। और भगवान भाव से ही मिलते हैं, भाव जहां अंतरंग बने तो महापुरुषों की गणना में आने लगता है, धीरे धीरे आंतरिक उन्नति होती चली जाती है। पर बाहरी सेवा के बिना नहीं, बाहरी क्रिया के बिना नहीं। उसे बहिरंग को हम अंतरंग का साधन समझें, बहिरंग जो है वो अंतरंग का साधन है, और अंतरंग जो है वो स्थिति होती है, बहिरंग स्थिति नहीं होती। बहिरंग अंतरंग का साधन है और अंतरंग की स्थिति होती है, जो अंतरंग साधन है वो स्थिति होती है साधक की। बिना अंतरंग के बहिरंग का कोई ज्यादा खास महत्व नहीं है।
कुछ विद्यार्थी या शिक्षक प्रश्न करते हैं, हम कहते हैं कि राधा नाम जपो, मान लो प्रशिक्षण देते समय कहते हैं कि नाम लेना चाहिए जो भी आप प्रभु को मानते हो
जी,
तब वो यूं कहते हैं कि भगवान कब मिलेंगे? मैंने कहा प्रयास तो करो, बहिरंग से आप शुरू तो करो, अंतरंग में अपना पाएंगे।
पर हम प्रणाम करते हैं उन बच्चों को जो प्रश्न करते हैं कि भगवान कब मिलेंगे। कम से कम प्रश्न तो उठा, भगवान के लिए प्रश्न तो उठा। धन्य है जिसके हृदय में ये प्रश्न उठ जाए, और धन्य है उसके जिसके हृदय में ये ललक लग जाए, और धन्य है जो प्रभु के लिए रुदन करने लगे, विकल हो जाए। पर वो भी प्राथमिक धन्य है जिसके अंदर प्रश्न उठा कि भगवान कब मिले।
वो ये भी कहते हैं कि आपने भगवान को साक्षात्कार किया का? मैंने कहा मैं तो प्रयासरत हूँ।
जी 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 बिल्कुल। और जो भगवान को साक्षात्कार किए हैं वो ना कह सकते हैं कि हाँ, और ना कह सकते हैं, क्योंकि हाँ नहीं कह सकते वो अनंत है, और ना नहीं कह सकते क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो वो जब मैं था तब हरि नहीं, आप हरि है, बस यही साक्षात्कार होता है। आप समझ ला, जब साक्षात्कार होता है तो यही साक्षात्कार होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है, मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी तावे दूल सवा। और कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं, तो इन सब में भगवान है, सब में। हमारी थोड़ी दृष्टि पवित्र हो जाए तो इन्हीं में दिखाई देंगे। वही वही मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई नहीं। सच्ची वाली है, मेरे प्रभु इन सब रूपों में बैठे, पर मलिन दृष्टि है तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई दे रहा है, बच्चा दिखाई दे रहा है, बूढ़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी को सिया राम मैं सब जगह साध, सब जगह भगवान सिया राम विराजमान दिखाई दिए। वही बैठे, दूसरा कोई है नहीं, वही बैठे। जैसे मंदिर में बैठे ऐसे इस शरीर रूपी मंदिर में सबके बैठे।
विपिन विलासी शरण जी,
राधा वल्लभ श्री हरिवंश
महाराज जी आप हमारे गूगल हैं, हमारी छोटी सी बड़ी समस्या जो भी होती है उसका आप समाधान करते हैं अपने सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के द्वारा। लेकिन एक विचार बार बार परास्त कर रहा है, जितना खुद को रोकता हूं उतना ही ज्यादा एक बार में गुस्सा कर देता हूं। सत्संग के कारण निराशा हावी नहीं हो पाती, परंतु अब और छन्नी में दूध नहीं दूना। इससे पहले लालजू ऑपरेशन करें, आप इसका इलाज करते।
गुस्सा किस बात में आते है? अनुकूलता में कभी किसी को गुस्सा नहीं आएगी, कभी किसी को नहीं आएगी। जब प्रतिकूलता आती है तब गुस्सा आती है। और क्रोध का मूल जड़ है काम। हम शांति की कामना कर रहे हैं और उसको अगर कोई भंग करेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। हम जो चाह करते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध आ जाता है। और वही हमारी कसौटी है कि हमारी चाह के विपरीत हो और हमें क्रोध ना आए, यही हमारी कसौटी है। हमारी कसौटी है कि जैसे हमको कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे जो हम भाषा नहीं जानते, तो हम केवल देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कुछ बोल रहा है। और जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम वैसे मुस्कुरावे, तब माना जाएगा कि अध्यात्म का ज्ञान आपको है, अध्यात्म का ज्ञान है। तो हम क्रोध, वैसे प्रवचन करना सरल है लेकिन जीवन में उतारना कठिन है। जब प्रतिकूल परिस्थिति हो और फिर हम क्रोध ना करें, उस समय विचार करें तो अध्यात्म सही चल रहा है। लेकिन उस समय वो विषय हमको आकृष्ट कर लेता है और हम भूल जाते हैं कि हम अध्यात्म के पथिक हैं, और हम गुस्सा कर बैठते हैं। फिर बाद में हमको पश्चाताप होता है, हम अगली बार के लिए तैयार हों कि हे भगवान, अब अवसर मिलेगा तो आपकी कृपा बल से हम मुस्कुराएंगे, क्रोधित नहीं होंगे। अगर फिर गुस्सा हो जाते हैं तो फिर हम प्रायश्चित करें कि आज हम जो क्रोध किए उसके लिए आज उपवास करेंगे, और अब अगली बार क्रोध आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमें गुस्सा ना आए। धीरे धीरे आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे, धीरे धीरे आप इस पर धीरे से चलिए, अपने ऊपर भी गुस्सा मत होइए। ये बहुत शांति से चलने वाला मार्ग है, अध्यात्म मार्ग बहुत शांत मार्ग है। इसमें उद्दंडता नहीं कि यार हमें गुस्सा क्यों आ गया, हम अपने को पीटने लगे, अपना कोई अहित करने लगे, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए भी शांत रहे। क्योंकि इस शरीर को पीड़ा देने से जैसे सांप अंदर बांबी के बैठा है बिल के, और ऊपर लाठी चलाओ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सांप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो तुम्हें क्रोध दिलाया वो अज्ञान तो अंदर बैठा हुआ है, वो आप शरीर को पीड़ा दे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब जैसे उपवास किए, उपवास करके भजन किए, तो उस पर फर्क पड़ रहा है। जो देहाभिमान है उस पर फर्क पड़ रहा है, जो अज्ञान है अब उस पर फर्क पड़ रहा है। और मन विचार करेगा गुस्सा किया तो ये दो दिन भूखा मारेगा, पीड़ा पहुंचेगी ना उसको भूख की, ऊपर से पीड़ा, दो दिन ये हमको व्रत में रखेगा और डट के जप करेगा तो अब हमें गुस्सा नहीं करनी। और जब गुस्सा का अवसर आवे तो दांत पीस ले और राधा राधा अंदर अंदर बिल्कुल खो लेना, वो गाली दे खूब गाली दे पर खो लेना वहां से, या तो हट जाए मौन होकर के चुपचाप, और या तो हिम्मत हो तो डटा रहे बस बोले ना तो बर, नहीं तो अगर बोलना शुरू हुआ तो फिर गुस्सा का काम ही है, फिर वो मतलब गलत करवा देगा, या तो गलत बुलवा देगा या तो फिर मारपीट होने लगेगी, या पूज्य जनों को भी गाली दिलवा दे। गुस्सा वो चीज है, अपने पूज्य जनों को, माता पिता वयो वृद्धों को भी अपशब्द बुलवा दे, क्रोध ऐसी चीज है। अरे अपशब्द क्या, थप्पड़ मरवा दे, ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कहो मारपीट शुरू हो जाए। इसलिए क्रोध तो बहुत नाशकारक है, और प्रायः जितने भी विनाश होते हैं वो सब क्रोध से ही होते हैं। क्रोध को शांत करने की कोशिश करें, भगवान बल देंगे, और धीरे धीरे क्रोध विजयी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 शत्रु हैं जो जीव को बांधकर दुर्गति कराते हैं।
महाराज जी पहले तो क्रोध की जलन 5 मिनट थी अगर उस समय जैसे आप कह रहे हैं, पर बाद में तो दिनों तक चले जाते हैं।
बहुत पश्चाताप होता रहता है कि यार हम क्यों गुस्सा हुए। बिल्कुल ठीक बात है, अगर पहली गर्मी सह जाए दांत पीस के तो वो 5 मिनट की गर्मी होती है, और अगर हम गर्मी में बोल गए तो बड़ी गलती हो सकती है, बड़ा परिणाम, अरे पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, पूरा जीवन बर्बाद। मान लो कहीं हाथ ऐसे किसी के लग जाए उसकी मृत्यु हो जाए तो आजीवन जेल कारावास। तो हमें क्रोध को थोड़ा शांत करना चाहिए।
मित्र विंदा सोनी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पिछले 7-8 महीने से पिताश्री के माध्यम से गुरुदेव के वचनों को जीवन में ग्रहण करने का प्रयास मात्र कर रही हूँ। आपके दर्शन की इच्छा थी जो आज पूर्ण हुई। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी प्रेम भक्ति को सौम्य नम्र कोमल शांत बनाकर जीवन की पूर्णता देता है। लौकिक जगत की पूर्णता क्षणभंगुर है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की पूर्णता ईश्वर से प्रेम है, मोक्ष है। तो उस प्रेम की उत्पत्ति का स्रोत और स्वरूप क्या है?
नाम। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब श्री हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम पहला नाम से ही प्रकाशित होता है, दूसरा गुण लीला चरित्र श्रवण से प्रकाशित होता है। जो उपासक निरंतर नाम जप करता है, भगवान के लीला चरित्रों का गायन करता है, भगवान की लीला चरित्रों को सुनता है, उसके हृदय में विशुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। रत्नावती जी का पावन चरित्र पढ़ करके देखिएगा, कभी पढ़ा है? किसका प्रश्न है, कभी रत्नावती जी का चरित्र पढ़ा है? एक बार पढ़िएगा चरित्र। उनकी दासी जी भगवान के प्रेम में निमग्न थी तो कभी कभी बोल उठती थी, हा वृंदावन बिहारी, हा गोविंद, हा कुंज बिहारी। तो वो एक जैसे संसारिक रानी होती ऐसे थी। तो उन्होंने एक दिन देखा एकांत में आकाश की तरफ आंख करके रोती हुई करे, हा कुंज बिहारी। तो उनको पता नहीं था कि कुंज बिहारी नाम भगवान का है। उनका ए तू मेरी दासी है और पर पुरुष से किसी से प्यार करती है, क्योंकि लक्षण प्रेम के हैं, तो किसको पुकार कर रोती है एकांत? वो सहम गए एकदम कि मेरे भगवत प्रेम को महारानी जान गई। तो उनका नहीं महारानी, तो उनका नहीं मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुम पर पुरुष से कैसे प्यार कर सकती हो, हमारी दासी हो। तो उनका महारानी मत पूछो, नहीं ऐसा रोग है कि अगर आपके चढ़ गया तो आपका ये सब रानी पना जो है ना ये मारा घूमेगा। अब अपने आवेश में आ गई, उनका क्या तुम समझती हो किसी संसारिक पुरुष का नाम है ये वृंदावन बिहारी कुंज बिहारी गोविंद, ये श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम है। तो एकदम वो कह मुझे क्षमा करो, मैं समझती थी आप गलत हो, अब आज से आप पैरों के पास बैठकर हमारे पैर नहीं दबाओगी, आज से आप हमारे सिंहासन के सिराने बैठोगी और हमें कुंज बिहारी की बातें बताओगी। भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसा प्रेम हुआ कि मुड़ मुड़ाकर संतों के बीच में बैठ गई रत्नावती जी। पति का इतना भारी विरोध, उनके पावन चरित्र को पढ़िए, तो भगवान के पावन चरित्र सुनने से और भगवान के नाम जप से प्रेम का प्रकाश हृदय में होता है, और जब प्रेम प्रकाशित होता है तो क्या क्या होता है ये कहने की जरूरत नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम की जो महिमा है वो अनिर्वचनीय, सूक्ष्मतरम बड़ा सूक्ष्म है, अनुभव स्वरूपम केवल अनुभव में आने वाला है, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, प्रीतम का साक्षात्कार होते हुए भी वो प्रीतम के लिए तड़पता रहता है। कैसी अजीब बात है, अरवरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत मनोकमहु मिले ना, यह है प्रेम। अरवरात मिलवे को निश दिन, रात दिन मिलने के लिए तड़पन हो रही और वो रात दिन मिले हुए हैं फिर भी ऐसा लगता है कभी नहीं मिले। अरवरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत मनोकमहु मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, प्रेमी के हृदय की बात तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। जैसे हमारे प्रिया प्रीतम आज तक पहचान नहीं हो पाई, अब इसे कैसे जानोगे, श्री लाल जू में श्री कृष्ण चंद्र जू में और प्रिया जू में आज तक पहचान नहीं हो पाई, और दोनों एक ही संग रह रहे, दोनों एक ही संग रह रहे। श्री स्वामी हरिदास चूंकि ये बहुत गूढ़ प्रेम रस की बातें हैं और प्रेम का ही प्रसंग है इसलिए थोड़ा नहीं समाज लायक नहीं, श्री स्वामी हरिदास जू बिहारी जू महाराज कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम हो तो देखो न कबहूरी द्वित को द्वित लेखने न कागत। श्यामा जू से लाल जू कहते हैं, श्यामा जू आपको जब जब देखता हूँ तब तब ऐसा लगता मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, क्योंकि प्यारी जू का ऐसा रूप है प्रतिक्षण वर्धमानम नवम नवम अबही और अबही और अबही और, प्रेम में इतनी भूख हो जाती है कि अपने प्यारे के सानिध्य में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं कभी मिला ही नहीं, मैं कभी मिला ही नहीं। दो आदिनांत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिनारी, अब उस गरिष्ठ प्रेम तक पहुंचने के लिए निरंतर नाम जप, परम पवित्र आहार परम पवित्र आचरण परम पवित्र व्यवहार, तब कहीं जाकर के वो ऐसा एकांतिक प्रेम जागृत होता है। अपने समाज में रहते हुए भगवत चिंतन परायण रहना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि खान पान व्यवहार सब अशुद्ध हो रहे हैं और मोबाइल का जमाना है, दुनिया का प्रपंच मोबाइल। आज तो हम देख रहे हैं कि लोगों की दृष्टि केवल दोषों पर टिक रही है, वो केवल दोष दर्शन में दोष मार्ग में दोष कथन दोष श्रवण दोष चिंतन दोष दर्शन, कहां प्रेम और कहां आज की वृत्तियां। बड़े धन्य भाग हैं जो आज इस कलिकाल में कोई भगवत प्रेम के मार्ग में चलना चाहता है। प्रेम बड़ा गूढ़ विषय है, प्रेम ऐसा समझ लो कि होली खेल करके ही प्रेम होता है। होली होली अपने प्रीतम की होली, दो प्रकार की होली होती है, एक होती है रंग होली और एक होती है नहीं बोले क्या जल रही होली, होली जला के फिर रंग की होली खेले। मैं और मेरा अपना और पराया इस अज्ञान की होली जला दे और एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम में प्रियाजू के प्रेम रंग में रंग कर अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दे, निरंतर नियम लेकर के भजन और भगवत चर्चा लीला कथा श्रवण कथन, कोई प्रपंच की वार्ता नहीं, कोई ग्राम में वार्ता नहीं, कोई भोग वार्ता नहीं, कोई लोक वार्ता नहीं, तब जाकर प्रेम स्फुरित होता है। अभी तो अपनी रसेंद्री अपनी जनेंद्री अपनी इंद्रियों के भोगों में ही मन राजी है तो श्री कृष्ण प्रेम तो बड़ा दुर्लभ विषय है। तो नाम से और भगवत लीला चरित्रों से हमारे हृदय में जरूर प्रेम प्रकाशित हो। हम रोज जिनकी चर्चा सुनते हैं तो देखो सानिध्य की इच्छा हो जाती है। जैसे आप प्रवचन सुने हैं तो आपके मन में आया एक बार चलूं एक बार देखूं तो बाबा को लाइव देखूं एक बार देखूं, आता है कि नहीं आता। जब हम सुनते हैं कोई बात किसी की बात सुनते हैं रोज तो एक बार लगता है एक बार लाइव तो देखें, तो ऐसे एक बार हमारे मन में आ जाएगा रोज कथा सुनते हुए कि यार हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं उनकी चर्चा सुनते हैं एक बार लाइव तो देखें कैसे है श्री कृष्ण, मन छटपटाने लगता है। ये छटपटाना ही विरह की तरफ जा रहा है, ये सकिलता जा रहा विरह की तरफ, अब उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, तो वो रोना शुरू करता है, हा कृष्ण हा कमल नयन, अब आप ही हमारे साधन हो, आप ही साथ दो, आप मिल जाओ ना। वो भगवान के लिए आ गया प्रेम, भगवान के लिए रोना ये आ गया प्रेम, प्रेम देवता हृदय में प्रकाशित, और प्रेम आ गया तो भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान का नाम प्रेमाधीन है, भगवान अधीन हो जाते हैं उसके। नाम जप करो, अच्छा पवित्र भोजन पाओ, अच्छे पवित्र आचरण करो, और भगवान की लीला कथा गाओ और सुनो, इसी से प्रेम प्रकाशित हो जाएगा।
सौरभ कुमार पांडे जी, महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं काशी के तुलसी घाट के पास से आया हूँ, श्री जी की कृपा से एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हूँ। गुरुदेव, मैंने आपके सत्संग में सुना था कि ईश्वर की पावर शक्ति हम सब में व्याप्त है। गुरुदेव, उस मेरा एक प्रश्न है, महाराज जी, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? गुरुदेव,
बच्चा उसे जन्म मरण का बंधन प्राप्त ही नहीं है, है ही नहीं है, जो हमारा भगवद अंश है उसको जन्म मरण हो ही नहीं सकता है। पर उसने जब इस देह को स्वीकार किया और भोग भोगने लगा, तब फिर जन्म मरण का, जन्म मरण जैसे स्वप्न होता है ना, ऐसे समझो जैसे आप स्वप्न में सोए थे, स्थूल देह को भूल गए कि नहीं, ये जो स्थूल देह से भूल गए, और स्वप्न में एक देह मिली थी, स्वप्न में जब थे तो आप थे ना, लेकिन ये स्थूल देह का तो ज्ञान नहीं था ना, तो उस समय जब उस देह में आप विचरण कर रहे थे वो आपका नया जन्म समझो, फिर आपका स्वप्न टूटा तो फिर स्थूल देह में आ गए ना, तो अब चूंकि ये एक ही देह की तीन दशा हुई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो आप उसको भेद नहीं कर पा रहे, ठीक ऐसे ही है, गाढ़ सुषुप्ति मृत्यु, फिर जगह दूसरी योनि में, फिर जगह तीसरी योनि में, अब अगर उसे मुक्त होना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करे कि मैं शरीर नहीं हूं, और अपने को भोगों से हटाए, अगर भोगों में लगा रहा तो फिर नहीं, फिर ये तो बड़ा दुखमय संसार है, बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, अगर भजन नहीं करेगा भगवान का और ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो इसी अज्ञान में बंधा बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। जैसे सोते हुए पुरुष को बड़ा स्वप्न में दुख या सुख मिल रहा है, पर उसे जगा दो तो वो जाग कर जानेगा कि ना वो सुख था ना दुख था, जगा हुआ पुरुष, ऐसे ही जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तब वो इस संसार से मुक्त होता है, नहीं तो बार बार जन्म मरण लगा रहता है। इसलिए बार बार भगवान का नाम जप करना चाहिए, नाम जप करने से ही हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से ही हम ये देख पाएंगे कि हम जन्म मरण वाले नहीं हैं, हम कोई स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं, तीनों का पावर जो वो मैं हूं, अब हमारा कोई रूप थोड़ी है, अपना कोई रूप थोड़ी, एक बिजली का क्या रूप है, आप कहोगे हाइलोजन, आप कहोगे एसी पंखा, ये बिजली का रूप नहीं है, ये तो बिजली जहां प्रयोग में आ रही वो यंत्र है, ये यंत्र है, करण है, ये वो जो कारण तत्व तो उसका कोई रूप नहीं है। जीव जिस रूप में आसक्त हो जाता है कर्मफल वही बनता, कभी सुअर कभी कुत्ता कभी नाली का कीड़ा कभी देवता कभी ब्रह्मा कभी ये, और जब जितने समय तक की आयु हुई उतना समय तक इस पृथ्वी में रहकर फिर दूसरी योनि को प्राप्त होता है, और पहली योनि वाला सब अब ये तड़प रहे हैं लेकिन उसको एक सेकंड भी इनकी याद नहीं है। कोई हमारे माता पिता थे पूर्व जन्म में, आप बोलो अभी कई साल के हो आप, 28 के वर्ष के पहले आप कहीं थे, लेकिन कौन था अब हमको याद नहीं, माँ के गर्भ में अभी थे हमें पता ही नहीं कि गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे, इसी जन्म की बात है। ऐसे पूर्व जन्म के जैसे माता पिता परिवार सब विस्मित हो गए, ऐसे जैसे अभी शरीर छूटा, और तो कभी याद नहीं आएगा, त्रिभुवन में त्रिकाल में कभी याद नहीं आएगा कि कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए तड़प रहा है, कोई मेरा, उसको कभी नहीं आएगा, वो अलग डिपार्टमेंट, बस जहां शरीर से हटा स्मृति खत्म, शरीर से देखो इसी शरीर में देखो, ये शरीर मां के गर्भ में रहा एक सेकंड की याद नहीं है, और 9 महीने रहे एक सेकंड की याद नहीं, तो पूर्व जन्म में भी हमारे माता पिता परिवार रहे होंगे हमें एक सेकंड की याद नहीं, ऐसे इस जन्म का भी याद नहीं रहेगा, हम नए जन्म में पहुंच जाएंगे, तो नया जन्म होने ना पावे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी की साधना है, इसी का भजन है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते राधा 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 राधा, ये बहुत दुखालय है, अब इनकी छाती से पूछो, अब सारे सुख फीके लग रहे हैं, अब बस यही लग रहा है, और जबकि अभी एक गया है, ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये भी जाएगा, यहाँ जितने जैसे कसाई वाड़े में नंबर आने पर हर पशु बद हो रहे ना, जैसे हो रहे, अब जिनको चारा डाला गया है वो तो नहीं जान रहे ना, कि बस 10-5 घंटे की बात है, हमारा नंबर आया सो हम गए, ऐसे ही चंद मिनटों की बात है, हमारा भी नंबर है, आपका भी नंबर है, अब वो कब है अब वो पता नहीं है। बस क्रम से समझ, यहां हम आए हैं केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए, चाहे गृहस्थ धर्म में हो चाहे विरक्त धर्म में हो, यदि भगवान का भजन हो रहा है तो हम भव समुद्र से पार हो जाएंगे। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता, और बड़ा भयावह संसार समुद्र है। प्रवचन कर लेना अलग बात है, जैसे हमने माना कि हमारा मित्र है या हमारा पुत्र है, और जब वो बिछोह को प्राप्त होता है तब उसके हृदय से पूछो क्या होता है, कोई ज्ञान काम ममता रतसन ज्ञान कहानी, उसको ज्ञान कुछ नहीं, उसको ये लगता है अगर कोई पावर हो तो एक बार केवल बात कर ले कि तुम ऐसा क्यों किए, एक बार बात कर ले कि क्या तुमको हमारे प्रति थोड़ा भी लगाव नहीं था, तुम केवल अपने ही विषय में सोचते थे, कम से कम ये सोचते कि हमारे जाने के बाद हमारी ऐसी क्रिया के बाद हमारे मम्मी पापा का क्या होगा, हमारे परिवार, मतलब तुम्हारे हम कोई नहीं थे, केवल तुम अपनी सोच। तो ये सब बड़ा मायाकृत है और बड़ा दुखद, जब अपने ऊपर बीतती है ना तब सच्चा ज्ञान पता चलता है कि क्या, दूसरे का तो उपदेश देना अलग होता, जैसे हम इनके हृदय से हृदय जोड़ा तो थर्रा गया हृदय कि इनका हृदय कितना व्याकुल है अपनी प्रियता में। अब वो ज्ञान काम नहीं करेगा, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अब वो ज्ञान कहानी को तो सुखद समय में समझ में आती है, लेकिन दुखद समय में भगवान की कृपा ही संभालती है, भगवान की कृपा। तो इस मनुष्य जीवन में ऐसा भजन कर लो, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो कि अगला जन्म ना हो,
आत्मज्ञान।
हाँ बस एक ही उपाय है,
पावर सब एक भगवान के, पावर सबके अंदर है, लेकिन उसी घाट पे संत महात्मा जप कर रहे हैं और वहीं पे लोग शराब पी रहे हैं।
हाँ, बात यहाँ देखनी बच्चा, बात यहाँ समझनी है कि वो तमोगुणी लोग हैं। आज हम सत्संग में कह रहे थे कि जैसे गंगा आदि किनारे और घाटियों आदि में भजनानंदियों का भजन का भाव बढ़ता है, ऐसे विषयी पुरुषों का विषय भाव बढ़ता है, तो उनका तो विषयी
ये तो खुद ही वहीं पे ही 84 पाठ करेंगे, वहीं पे लोग पीते, मना करने जाइए तो लोग
नहीं, मना नहीं, मना करने की आज की क्षमता नहीं, आज आप मना करोगे वो आप पर प्रहार कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप अपना 84 जी का पाठ करो और वो अपना कर रहे हैं, वो अपना बीज बो रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं वो बहुत भयानक है, क्योंकि काशी जैसे परम पवित्र क्षेत्र में गंगा के किनारे मदिरा पाने तो महापाप कर रहे हैं, अब उनका कहां धुलेगा जाके, तो उनको बेचारे बुद्धिहीन है। आप बहुत बहुत इतना कर दीजिए कि भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थना कीजिए कि इनको क्षमा करना, प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दो, ये आपके ही धाम में रह रहे हैं, आपकी नगरी में रह रहे हैं, तो आप इन पर कृपा कीजिए। बकाया बच्चा कलयुग जैसे जैसे बढ़ता, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है कि क्या होगा धर्म का, ऐसा बढ़ता चला जा रहा है समय, और ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है कि डर लग रहा है कि कैसे समाज उभरेगी। जब पापात्मा जीवों की वृद्धि होती जाएगी तो प्रकृति अपने सौंदर्य और अपनी शक्ति को अपने अंदर खींचती चली जाएगी। अब देखो बड़े बड़े आम के वृक्ष थे, जहां फ्री आम खाओ आम के फसल में, वो सब आम खत्म। बड़े जो वृक्ष होते थे एक एक बीघा में ऐसे फैले हुए कि एक एक गाड़ी आम होते थे, वो वृक्ष गए। पृथ्वी बड़ी बड़ी कीमती और सुखद वस्तुओं को अपने अंदर छुपाती चली, पानी का लेवल नीचे चला जा रहा है और वृक्षों की हानि होती चली जा रही, ऑक्सीजन कम होता वातावरण में चला जा रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पाप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रकृति त्राहिमाम बुलवा देगी सबको। अभी मनमानी आचरण कर ले, जैसे हमें तो डर लग रहा है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले नहीं आगे और कलिकाल ऐसा आता चला जाएगा भगवत प्राप्ति का ना। आजकल मांस मदिरा गलत आचरण एक मनोरंजन हो गया है, मनोरंजन हो गया, कोई से थोड़ी मानता है पाप है, कोई नहीं मानता। व्यभिचार को कोई पाप मानता है क्या? आजकल तो मनोरंजन माना जाता है, कलयुग है बच्चा, बहुत बढ़ रहा है।
वृंदावन से जाने के बाद गुरुदेव मन बेचैन हो जाता है, भजन बढ़ने लगता है, उसके बाद कम होने लगता है गुरुदेव जाने के बाद।
हाँ, अब ये तो खैर भगवत धाम है, यहाँ तो परमाणु ऐसे हैं, अभी जगह जगह कीर्तन भगवत कथा भगवान नाम बड़े प्रेमी महात्मा विराजमान है, इसलिए ऐसा। पर अपने में रहे, देखो अपने में रहे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर नाम चल रहा है हम दूसरों के दोष दर्शन करके अपने अंदर ना आने दें तो हम सुरक्षित बने रहेंगे। नाम पहारू दिवस निचि, लंका में रह करके जानकी जी कैसे सुरक्षित है। नाम पहारू दिवस निचि ध्यान तुम्हार कपाट, रात दिन नाम जपो भगवत ध्यान तो सुरक्षित रहोगे कहीं भी रहो। और सब लोग सबसे प्रार्थना है व्यसन किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं, गंदी बातें किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं। यदि गंदी बात और नशा और मांस भक्षण आदि छोड़ पाओ तो बहुत उत्तम बात है। और भगवान का नाम जप करो, एक न एक दिन शरीर जाना है, नाम ही तुम्हें परलोक में बचाएगा, नाम ही तुम्हें इस लोक में भी शांति प्रदान करेगा। अगर नाम जप नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कलयुग में अब कोई साधनाएं नहीं रह गई, कलयुग का इतना प्रचंड रूप बढ़ता जा रहा है, अब क्या यज्ञ कोई कर सकता है? आहुति का दिया पता नहीं उसमें चर्बी मिली होगी, में उसके लिए शुद्ध चाहिए ना पदार्थ। अच्छा आप शुद्ध धान्य जौ आदि खरीदें तो खेतों में इतने केमिकल पड़े कि अशुद्ध हो गया, यज्ञ लायक नहीं रहा। अब रही ध्यान की बात, तो आंख मूंद के देखो मन कितना चंचल बिजली की तरह है, अभी यहां अभी बंबई अभी कलकत्ता, मन कोई शांत थोड़ी है। अब और साधन देखो, व्रत उपवास, कौन सा व्रत है जो भगवान की प्राप्ति के लिए रहा जाए? कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, ये चीज वो चीज, ये व्रत है। तो अब एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, खूब नाम जप करो, ये तुम्हारा लौकिक पारलौकिक सब मंगल कर देगा। बहुत बहुत कलिकाल का जैसा वृद्धि बढ़ती चली जा रही है अधर्म आचरण की, अभी तो आप लोग कृपा करके सुन रहे हैं, नहीं ऐसा भी समय आएगा संतों की कोई बात सुनेगा नहीं, कोई संतों की बात नहीं सुनेगा, धर्म की बात नहीं सुनना चाहेगा। आप तो समय दिए हैं हमें, आप कृपा किए कि आप यहाँ शांति से बैठ के सुन रहे हैं, आगे ऐसा समय आएगा कि हम चिल्लाते रहे, संतजन चिल्लाते रहे, कोई सुनेगा नहीं उनकी बात। हाँ पाखंड और दम्भ का बोलबाला होगा, नौटंकी नाटक का कीमत होगी, और सत्य मार्ग पर चलने वालों को कोई बातें नहीं सुनेगा। अभी तो आप कृपा करके कम से कम समय दे रहे हैं हमें और सुनने आ रहे हैं, और आप परिवर्तन भी कर रहे हैं, समाज हमारा परिवर्तित भी हो रहा है सुन करके। तो इसलिए अभी तो अवसर है, आगे और ऐसा अवसर आएगा कि समय आएगा, अभी तो है आप खुला साउंड लगा करके कम से कम सत्संग तो सुन रहे हो हजार लोग बैठ करके, फिर ऐसा भी नहीं होगा। तो अभी समय है, भजन कर लो, भगवान को रिझा लो, नहीं आगे और ऐसा समय आने वाला है जो बड़ा अनिष्टकारी होगा, प्रतिपल बढ़ता ही चला जाएगा अनिष्ट। पहले जितनी शांति और साधुता देखी अब वो नहीं रह गई, 40 वर्ष पहले जो हमने देखी वो अब नहीं रह गई। मोबाइल के जमाने में बहुत सी बहिर्मुखताएं, बहुत सी कमियां ऐसी आ गई जो नहीं होनी चाहिए अपने लोगों में, बहुत सी कमियां आ गई। आगे चलकर और 10-20 वर्ष में देखना ऐसी आ जाए। अब आप दूध शुद्ध लेना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, आपको घी शुद्ध लेना मुश्किल पड़ेगा, ये केमिकल के बने हुए ऐसे पदार्थ आते हैं जो असली पदार्थ बिल्कुल लगते हैं।